कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोता, आधे घंटे इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोता, परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार अथर, वेलकम अलोंग लिसनर्स, ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। वेल, इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड हियर वी आर फॉर यू विद लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ, नेमली सिलेक्शन ऑफ न्यूज रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस न्यूज, ट्रिब्यूट्स। वी हैव ऑल दिस एंड मोर लाइंड अप फॉर यू ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हेडलाइंस।
बिल्कुल शगुन।
Prime Minister Narendra Modi emphasizes need for research and innovation in agriculture sector.
सरकार ने कहा हथकरघा और हस्तशिल्प की घरेलू बिक्री और निर्यात बढ़ाने के लिए कई पहल की जा रही है।
7 persons killed in a stampede at temple in Jahanabad district of Bihar.
हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथियों के लिए अनुकूल पर्यावास सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
And Indian equity benchmark indices recover from early losses to trade in positive territory in afternoon session. And now we will take a look at the developments taking place at national and global level in our segment Dateline India. Today we will talk about Har Ghar Tiranga, International Youth Day and World Elephant Day. Well, as India prepares to celebrate its 77th Independence Day, 77th, with enthusiasm and pride, the Har Ghar Tiranga campaign under the Azadi Ka Amrit Mahotsav initiative has once again taken center stage. Prime Minister Narendra Modi, along with other leaders, has urged the nation to support the campaign and make it a mass movement. It was launched by Prime Minister Modi in 2022. The Har Ghar Tiranga movement is now in its third year. This year, the campaign will also include a special Tiranga bike rally, which is tomorrow, featuring members of parliament. The rally will commence at Bharat Mandapam, Pragati Maidan, and conclude at Major Dhyan Chand Stadium, passing through the iconic India Gate. And there are lots of other events also. Now talking about Jammu and Kashmir, Tiranga rallies are being taken out today in several districts ahead of the Independence Day celebrations. Lieutenant Governor Manoj Sinha today led a huge Tiranga rally in Srinagar, which witnessed the participation of thousands of people. Prime Minister Modi has said that the Tiranga Yatra carried out by the people of Jammu and Kashmir is inspiring. Mr. Modi lauded the initiatives taken by Lieutenant Governor Manoj Sinha for promoting Har Ghar Tiranga Abhiyan.
कितना अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है शगुन।
बिल्कुल, बिल्कुल।
हर घर के ऊपर तिरंगा फहराता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने अभी से शुरू कर दिया है तिरंगे को फहराने का, क्योंकि हर साल से अब हमारी आदत में शुमार हो गया है। जैसे ही अगस्त का महीना आता है, हम तिरंगे को फहराने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। और जब कहीं न कहीं तिरंगा फहराता है तो सारे भारतवासी कहीं न कहीं एक माला में जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो राष्ट्र के लोगों को एकजुट करने के लिए एक माला में पिरोने का माध्यम तिरंगा हो सकता है। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी बान है, तिरंगा हमारी शान है। और तिरंगा जब फहराया जाता है तो कहीं न कहीं हमारे सीने में एक जोश उभरने लगता है। शुक्रिया। गौरतलब है कि अन्य प्रमुख संभावनाओं के अलावा तिरंगा अभियान का एक अतिरिक्त आकर्षण अपने नागरिकों के लिए हर घर तिरंगा प्रमाण पत्र का लाभ उठाना भी है, यानी आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और इस पहल के तहत नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने, झंडे के साथ एक सेल्फी लेने और इसे हर घर तिरंगा .com पर अपलोड करने और फिर प्रमाण पत्र सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मैं एक बार दोहरा देता हूं कि कहां आपको अपलोड करना है सेल्फी तिरंगे के साथ। हर घर तिरंगा .com ये वेबसाइट है जिस पर हमें तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को अपलोड करना है। और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हम भारतीयों को अपने आवासों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और इस पहल को एक जन आंदोलन में बदल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर को तिरंगे में बदल दिया है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है, प्रोत्साहित किया है। बड़ी अच्छी बात है।
We should go ahead with it and do it.
बिल्कुल सही कहा आपने। और उन्होंने आधिकारिक अभियान वेबसाइट हर घर तिरंगा, जैसे कि हमने पहले कहा, हर घर तिरंगा .com पर एक लिंक भी साझा किया है जहां नागरिक राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। शगुन,
Right. Well, Har Ghar Tiranga is a component of the broader Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is a government initiative celebrating 75 years of our independence. It was launched in 2021. The campaign aims to instill a sense of patriotism and raise awareness about the national flag. It fills us with pride, right?
Bilkul.
This Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India thus far in this evolutionary journey, but also hold within them the power and potential to enable PM Modi's vision of activating India 2.0, fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat.
Bilkul sahi kaha aapne, Shagun. Tiranga matra jhanda nahi, balki hamara gaurav hai, hamara ghurur hai. Jab hum apne tirange ko अपने घर की ऊंची जगह पर फहराएंगे तो हमारा सीना राष्ट्रभक्ति से भर उठता है.
हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है.
और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है. तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें. अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करें.
वेल, व्हेन वी थिंक ऑफ यूथ, we think of the energy of youth, which is the driving force behind the progress of a country. And today, listeners, it's International Youth Day. It is celebrated to mark the contributions of the youth in the development of society alongside understanding the challenges which they face. This day is celebrated through various awareness campaigns, community concerts, and also events to bring to notice the socio-economic and socio-political issues that the youth in every nation faces. Well, let's delve a bit into the history of this day. The United Nations declared in the year 1999 that August 12th would be this particular day, which will be celebrated as the International यूथ डे.
बिल्कुल सही कहा आपने शकुन. 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया. उन्होंने शांति, दूसरों के प्रति सम्मान और अंतर सांस्कृतिक समझ के मूल्यों को बढ़ावा देने वाली घोषणा को मंजूरी दी. आज विश्व युवा दिवस है, हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं. आज हम देखते हैं शगुन की युवाओं के दो वर्ग हैं. एक वर्ग तो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है और दूसरा वर्ग राष्ट्र राह से कहीं न कहीं हमें भटका नजर आता है. एक वर्ग तो देश सेवा की बात करता है और खेलों के माध्यम से, चाहे कला के माध्यम से, चाहे उच्च शिक्षा के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, देश की रक्षा करने के प्रण के माध्यम से, संगीत के माध्यम से वो देश और दुनिया और मानवता के कल्याण की बात करता है, कार्य कर रहा है. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ जो हमारा युवा है कहीं ना कहीं नशे की लत का शिकार है, नशे में की दलदल में धंसा नजर आता है और शिक्षा से दूर नजर आता है, पढ़ाई से दूर नजर आता है, संस्कार से दूर नजर आता है. कहने का मतलब यह कि हर अच्छाई से दूर होता चला जा रहा है. तो मैं तो ये कहता हूं कि आज युवा को जरूरत है अपने आप को आगे ले जाने की, परिवार का नाम रोशन करने की, देश सेवा करने की, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मानवता के कल्याण की बात सोचने की आवश्यकता है. क्योंकि युवा जब ठान लेता है किसी बात के लिए तो मंजिल उसके कदमों में होती है. कहते हैं ना कि जब युवा ठान लेता है तो देश आगे बढ़ता है, देश को उस पर नाज होता है कहीं ना कहीं. और इसको अगर मैं कविता के माध्यम से कहूं तो पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो. तो युवा शक्ति को आगे बढ़ने की आवश्यकता है और सकारात्मक कार्यों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है.
वेल, देयर इज वन कोट व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद आवर लिसनर्स, व्हिच आई आल्सो रिमेम्बर. यूथ इज नॉट अबाउट एज but about the courage to chase dreams relentlessly in the direction of the dreams. We should always go ahead.
अपने इस टॉपिक के बाद हम इस पर छोड़ देते हैं कि युवा को सपने देखने चाहिए,
right.
सपने ऊंचे देखने चाहिए और सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए.
यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है. यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है. हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है.
Well, listeners, today is also World Elephant Day. And this year, the theme of this day is personifying prehistoric beauty, theological relevance and environmental importance. It is an annual international event which is held to promote the conservation and protection of elephants worldwide. On this momentous day, we have an opportunity to draw attention to the problems that elephants face, such as habitat loss, poaching of ivory, conflicts between humans and elephants, and the need for increased conservation efforts. The goal of this day is to establish a sustainable environment in which animals are not exploited but cared for.
बिल्कुल ठीक है आपने. हाथी की जब भी बात आती है, मैं तो कहता हूँ जब भी पशु पक्षियों की बात आती है तो कहीं न कहीं जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं. क्योंकि हाथी की बात हो रही है तो कई दशकों के अध्ययनों से पता लगा है शगुन कि हाथियों की संख्या सीधे जंगल के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है. वो बीज फैलाने और पेड़ लगाने में मदद करते हैं, इसलिए वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में भी भूमिका निभाते हैं, बल्कि कहता हूं कि अहम भूमिका निभाते हैं. और ये भी कहा जाता है कि विभिन्न जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाली पानी के छेद हाथियों द्वारा ही बनाए जाते हैं. लेकिन आज के अगर हम दौर में देखें तो हमने यानी इंसानों ने पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. शोर हमने पैदा किया, जंगल हमने काटे, रसायनों का इस्तेमाल हमने किया, प्रदूषण हमने फैलाया. और अगर हमने इन पर काम किया तो एक बार फिर हाथी का संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है. हाथी अपना पुराना गौरव पा सकते हैं, है ना. तो इस तरह से हाथी के जो आज के दिन का मतलब ही यही है कि हम जागरूक हो जाएं.
चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खचारा खींच के चल यार भटका मार. बंद है मोटर कार, चल यार भटका मार.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि क्या कुछ खास है उनके पास. शगुन, तो पहले हम कहाँ जा रहे हैं?
वेल, वी आर टेकिंग अवर लिसनर्स टू मिजोरम फर्स्ट. इन मिजोरम द स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग अप अ कंसर्टेड एफर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट्स इन द स्टेट. वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम अवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
With the aim and objective of enriching the farmers' community of the state, Mizoram's Horticulture Department is working tirelessly for the promotion of dragon fruit in the state. Dragon fruit was first introduced in the state in the year 2014-15 and has been picked up by almost all the 11 districts of Mizoram. State Horticulture Department has taken up the initiative of dragon fruit cultivation and area expansion under centrally sponsored scheme like Mission for Integrated Development of Horticulture, MIDH. According to officials, the current yield is around 800 metric ton and has been exported outside the state as well. Promoting its cultivation, a three-day dragon fruit extravaganza was recently organized in Aizawl. It aims to create more cultivation of the dragon fruit in the state and generation of more income by the farmers. Speaking to Akashvani News, Lelsang Kimi, Block Horticulture Officer, Horticulture Department, says that the government is taking up various initiatives for the promotion of dragon fruit in Mizoram. She says,
"Okay, dragon fruit cultivation in Mizoram started in the year 2014-15, and since then Mizoram has been a pioneer in dragon fruit cultivation, not only in the northeast but in India as a whole. It is successfully grown in countries like Vietnam, Thailand, Malaysia, Burma and other southeastern countries. Dragon fruit is basically a climbing cactus which grows well in warm and humid conditions, which is why it is ideally suited for Mizoram. It is commercially propagated through cuttings. It is currently being cultivated in almost all districts of Mizoram."
Mizoram has the potential for development of various horticulture projects, especially under CSS, Mission for Integrated Development of Horticulture, MIDH. Apart from dragon fruit, the State Horticulture Department is engaged in working towards the holistic growth of other horticulture agriculture sectors, covering fruits, vegetables, flowers, aromatic plants and bamboo. Irene reporting from Aizawl.
जैसे जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक आता जा रहा है, शगुन बाजार में रंग बिरंगी राखियां हमें देखने को मिल रही हैं, ट्रेंडी राखियां देखने को मिल रही हैं। बाजार में जहां सोने चांदी और डिजिटल राखियां बिकती नजर आ रही हैं आजकल, वहीं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अगर गुजरात की बात करें तो वहां कच्छ में गाय के गोबर से बनी राखियां लोगों का खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कच्छ में एक ट्रस्ट द्वारा गाय के दूध, गोबर और गौमूत्र से वैज्ञानिक तरीके से राखी बनाई जा रही है। गौपालन के महत्व को बढ़ाने के लिए वैदिक राखी बनाई गई है, जो देश के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात की जा रही है। इस पर और जानकारी लेते हैं अपनी संवाददाता अर्पणा से।
भूज तालुका के कुकमा में रामकृष्ण ट्रस्ट ग्रामोद्योग के तहत पिछले 7 वर्षों से गोबर से राखियां बना रहा है। इस साल ट्रस्ट की ओर से गाय के गोबर से अलग अलग डिजाइन की 10 से 12 हजार राखियां तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे को अमल में लाते हुए स्थानीय स्तर पर उत्पादित उत्पादों का उपयोग बढ़ाने और स्थानीय लोगों को रोजगारी उपलब्ध कराने के लिए राखियों के साथ साथ अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन किया जा रहा है। ट्रस्ट के संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी मनोज सोलंकी ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। लोग रक्षाबंधन जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान प्लास्टिक का उपयोग करने के बजाय गाय के गोबर से बनी राखी का उपयोग करना पसंद कर रहे हैं। इस राखी को बनाने के पीछे संस्था का उद्देश्य यह है कि गोबर की राखी मानव शरीर को ऊर्जा देती है और साथ ही गोबर के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण अधिक से अधिक लोग गोबर का उपयोग भी करते हैं। जो लोग सीधे गोबर का उपयोग नहीं कर सकते हैं वो गोबर के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से गोबर का उपयोग कर सकते हैं। राखी के अलावा यहाँ गोबर के तोरण, घड़ियां, दर्पण, शोपीस, गणपति की मूर्तियां भी बनाई जा रही है। कुकमा और आसपास के गांवों की छोटी लड़कियां, युवती, महिलाओं इन गोबर की राखियों, खिलौनों और हस्तशिल्पों में रंग भरने का कलात्मक काम भी करती है। इस गतिविधि के बदले में रामकृष्ण ट्रस्ट आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा के खर्च को प्रोत्साहन के साथ वहन भी करता है। परिक्रमा के लिए भूज से परेश मारू के साथ अहमदाबाद से मैं अपर्णा खूंट।
Well, now moving on, the Ministry of Social Justice and Empowerment organized a mass pledge-taking ceremony against drug abuse under Nasha Mukt Bharat Abhiyan, which is NMBA, across the country today. Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virendra Kumar administered the oath in New Delhi. The theme of this year is Viksit Bharat Ka Mantra, Bharat Ho Nashe Se Swatantra. Addressing the gathering, the minister said that more than 11 crore people have become part of NMBA so far. He said more than 1 crore people from across the country, including state and union territory governments, central ministries, students and faculties of schools, colleges, universities, National Cadet Corps, Nehru Yuva Kendra Sangathan and other public institutions participated in the event online today. We have a report.
जिस तरह से नशे के कारोबारी शैक्षणिक संस्थाओं को अपना केंद्र बना रहे हैं, सरकार गृह मंत्रालय इस संबंध में काफी तत्परता से कदम उठा रहा है। आज की तारीख में अब जो नशे की सामग्री जब्त हो रही है उसको भट्टियों में नष्ट किया जा रहा है और गृह मंत्रालय नशे के कारोबार से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध जो है शक्ति के साथ में कदम भी उठा रही है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इस दिशा में जागरूकता के कार्यक्रम करने, अवेयरनेस के प्रोग्राम करने, उपचार के कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने, शैक्षणिक संस्थाओं में जहां तक आपने बात की है एक नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से उसमें हम अध्यापकों के और छात्रों के ग्रुप बनाने का काम उसमें किया जा रहा है।
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember freedom fighter Bandhu Singh Srinath, who was martyred on the 12th of August, 1857. He participated in the First War of Independence against the British in the Gorakhpur area of Uttar Pradesh.
Bandhu Singh was born on the 1st of May, 1833, in the erstwhile Dumri Riyasat, now in Uttar Pradesh. He used to fight the British with guerrilla war technique. There is a saying that he used to sacrifice heads of enemies in the Tarkulla Devi temple. He was arrested by the British and hanged publicly at Ali Nagar Chauraha in Gorakhpur on the 12th of August, 1857.
It is said that the hangman was unable to hang him 7 times due to breaking of the rope by the grace of Tarkulla Devi. It was successful only the 8th time when Bandhu Singh prayed to Tarkulla Devi.
A memorial to honor Shaheed Bandhu Singh has been built near the temple of Tarkulla Devi near Chauri Chaura, Uttar Pradesh. Every year, people join in a fair at the temple and remember the brave son of the soil, Bandhu Singh, freedom fighter.
We also remember Ajmer, who participated in the First War of Independence in 1857. Ajmer organized a group of independence activists during the uprising and led it to fight the British at different places in the Bombay Presidency. He was captured by the British in the course of their attacks and put in trial for aiding and abetting the rebellion against the British.
Ajmer was sentenced to imprisonment for 10 years with hard labor in irons and transported to the Andaman Islands, where he died in detention on the 12th of August, 1859.
We also remember nationalist Balwant Singh alias Banta Singh, who was executed on the 12th of August, 1915. A resident of Sangwal, Jalandhar, Punjab, Balwant Singh took part in the Ghadar Party activities against British rule. In 1914, he formed a group of revolutionaries among the returning emigrants and was involved in two raids in Jalandhar during December 1914 and January 1915. His house was searched by the police and a large quantity of revolutionary literature recovered.
He led the attack against the military guard at Amritsar and Nangal Kalan in Punjab. He was arrested in July 1915 and executed on the 12th of August 1915.
We remember independence activist Balbhim Khatavkar, who was born on the 12th of August 1900 at village Pusesauli, district Satara, Maharashtra. The Gandhian slogan of do or die during the Quit India movement inspired Balbhim Khatavkar to join the independence struggle in Khatav Taluka, Satara. On the 9th of September 1942, he joined a demonstration of more than 2,000 under the leadership of Parshuram Gharge.
Singing patriotic songs and shouting nationalist slogans, it marched on to hoist the tricolour Congress flag on the Vadu's Kacheri building.
The marchers were stopped by the police officials and on refusal to disperse, they were fired upon. The firing resulted in the death of 9 persons and Balbhim Khatavkar was one among them. We salute the brave martyrs. We also remember Quit India student activist Lal Padamdhar Singh from District Rewa, Madhya Pradesh. As a student leader of Allahabad University, he led a protest rally during the Quit India movement in Allahabad on the 12th of August 1942.
The protesting students were fired upon by the British police that day. In the indiscriminate police firing, Lal Padamdhar Singh lost his life on the spot at the age of 21.
और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं खेल गतिविधियां। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 रंगारंग समापन समारोह के साथ कल संपन्न हो गए हैं। समापन समारोह पर क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं अपने संवाददाता की इस रिपोर्ट से। चलिए खेल की बात हम करेंगे, लेकिन अब
यस नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड। Well, India's equity benchmark indices, Sensex and Nifty, closed flat amid volatility today. The BSE Sensex dipped 57 points or 0.07% to close at 79,649. The NSE Nifty slipped 21 points or 0.08% to close at 24,347. In the global crude market, Brent crude is trading at $80.30 per barrel. WTI crude is trading at $77.62 per barrel when reports last came in.
और अब आइए सुनते हैं वो रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, यानी पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के समापन समारोह पर अपने संवाददाता की रिपोर्ट।
33वें ओलंपिक खेलों का कल पेरिस के स्टेड डे फ्रांस में एक भव्य समारोह के साथ समापन हो गया और इन खेलों की मशाल अब लॉस एंजलिस को सौंप दी गई, जहां 2028 में अगले ओलंपिक खेल होने हैं। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। समारोह में पेरिस ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष टोनी इटांगुए ने तहे दिल से सभी एथलीटों और मेहमानों का आभार व्यक्त किया, साथ ही 45,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स, आयोजकों और पेरिस वासियों का भी शुक्रिया अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाक ने इन खेलों को सफल बताया और ओलंपिक ध्वज लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास को सौंप दिया। समापन समारोह में मशहूर अमरीकी अभिनेता टॉम क्रूज स्टेडियम से मोटरसाइकिल पर ओलंपिक ध्वज लेकर निकले। पेरिस ओलंपिक खेलों में 17 से ज्यादा नए विश्व कीर्तिमान बने। इन खेलों के सबसे सफल एथलीट रहे मेजबान फ्रांस के तैराक लियो मचां, जिन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में अमेरिका की तैराक टोरी हस्के का प्रदर्शन सबसे शेष रहा। टोरी ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। 1 रजत और 5 कांस्य यानी कुल 6 पदकों के साथ भारत रहा पदक तालिका में 71वें स्थान पर। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस।
और बात उन व्यक्तित्व की जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस, और इस क्रम में सबसे पहले हम याद करेंगे गुलशन कुमार को जिनकी आज है पुण्यतिथि। गुलशन कुमार प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक थे और वे एक संगीत कंपनी के संस्थापक भी थे। गुलशन कुमार का नाम फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शुमार होता है जिन्होंने काफी कम समय में ही शोहरत की उन बुलंदियों को हासिल कर लिया था जहां पहुंचना हर किसी का सपना हुआ करता है। संघर्षपूर्ण जीवन बिताने के बाद अपने संगीत और उसके प्रति अपनी लगन से उन्होंने खास मकाम हासिल किया। ये कहा जा सकता है कि गुलशन कुमार ने पूरे भारत में भक्ति की एक लहर फैला दी थी। और संगीत की अगर हम बात करें तो संगीत उद्योग में एक नई क्रांति जगा दी थी। उनके एक गीत सुनते हैं जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन है।
हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या।
सचमुच ये गीत और ऐसे हजारों गीतों को जन्म दिया गुलशन कुमार ने। गुलशन कुमार ने सोनू निगम सहित कई गायकों को ब्रेक देकर उनके करियर में अहम योगदान दिया है। और इतना ही नहीं, कई अन्य गायकों को भी उन्होंने ऊंचा उठाया है। अनुराधा पौडवाल की अगर बात करें या फिर कुमार सानू जैसे सदाबहार गायकों की बात करें तो उनके करियर को एक नई ऊंचाई दी है। तो कुमार सानू की आवाज में एक गीत सुनते हैं जो कि गुलशन कुमार की कंपनी ने उसको प्रोड्यूस किया था।
तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है।
Well, today we're also remembering Percy Mayfield. It's his birth anniversary today. He's a rhythm and blues singer with a smooth vocal style. He was also a songwriter who's known for the songs Please Send Me Someone to Love and Hit the Road Jack. And listeners, for you, we are listening to this track, Lost Love by him.
Please come back to me. Because I am a prisoner, I need your love to save.
और बात जन्मदिवस की करें तो आज जयंती है महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की। उनको भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। विक्रम साराभाई ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर देश की उपस्थिति दर्ज कराई। अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना उनकी महान उपलब्धियों में से एक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM अहमदाबाद और ऐसे बहुत सारे संस्थानों को उन्होंने जन्म दिया। विक्रम साराभाई को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी विभूषित किया गया।
राइट, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग लेपोल। ही इज द अमेरिकन जैज, कंट्री एंड ब्लूज गिटारिस्ट एंड सॉन्ग राइटर। ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द सॉलिड बॉडी इलेक्ट्रिक गिटार एंड हिज प्रोटोटाइप कॉल्ड द लॉग सर्व्ड एज इंस्पिरेशन फॉर द गिब्सन लेपोल। एंड लिसनर्स, फॉर यू वी हैव दिस ट्रैक, हाउ हाई द मून, इन विच ही इज प्लेइंग गिटार।
There is no moon above, love is far away too, till it comes true that you love me, I love you. Where there's music, I wonder how far. Where there's heaven, it's where you are. The darkest night, the shine of you would come.
आज ही जन्मदिन है प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब का। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास पर उनका अध्ययन मुख्यतः रहा है। भारत सरकार द्वारा 2005 में इरफान हबीब को पद्मभूषण से सम्मानित किया गया।
वेल टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग लोरेटा यंग। शी इज एन एक्ट्रेस हु स्टार्टेड एज अ चाइल्ड एक्टर। शी हैड अ लॉन्ग एंड वेरिड करियर इन फिल्म्स फ्रॉम 1917 टू 1953। शी स्टार्ड इन फिल्म्स सच एज द फार्मर्स डॉटर, बोर्न टू बी बैड, कॉल ऑफ द वाइल्ड, द क्रुसेड्स, Eternally Yours, The Stranger, The Bishop's Wife, and many more.
और श्रोता, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए अतहर सईद और शकुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com। साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। अब अनुमति दें शकुन चोपड़ा और अतहर सईद को। नमस्कार।